الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت کر رکھے. آمین یا رب العالمین. سورۃ الکہف اور سورۃ الکہف سے متعلق کچھ سبق، کچھ لیسنز جو ہمیں اپنی فوراً زندگی میں فائدہ دے سکتا ہے. سورۃ الکہف ایسی صورت ہے کہ جس کو آپ کو اور مجھے ہر جمعے کے دن پڑھنے کا کہا گیا ہے، اور آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اگر آپ پوری صورت پڑھتی ہیں تو الحمدللہ احادیث سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ آپ اس کی اگر پوری صورت نہ پڑھ سکے تو شروع کی 10 آیات اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے آخر کی 10 آیات کم سے کم پڑھنے کی کوشش ضرور کر لیں، تاکہ یہ کہ آپ کے لیے ایک سنت کا جو ہے پورے کرنے کا ثواب وہ بھی مل جائے، اور ساتھ ساتھ جو صورت یہ آپ کو اور مجھے سکھاتی ہے اس کا بھی کچھ فائدہ، کچھ بینیفٹ آپ کو اور مجھے مل جائے. سورۃ الکہف کے اوپر ایک گھنٹے کے اندر کوئی ایسی بات کرنا جو بہت پروفاؤنڈ بھی ہو اور سورت سے متعلق بھی ہو، تو اس میں ایک ہی طریقہ مجھے نظر آ رہا تھا کہ جس میں انشاءاللہ ایک سٹنگ میں ہم کوئی فائدہ مند بات لے کر اٹھ سکتا ہے. آپ کو سورۃ الکہف کا بیک گراؤنڈ شاید تھوڑا بہت معلوم ہوگا. سورۃ الکہف ان صورتوں میں سے ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کیا گیا تو آپ سے یہودیوں نے بعض سوال پوچھے تھے. ان سوالوں کے جواب کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ وحی آئی تھی. جیسے بعض صورتوں کے بارے میں آپ جانتی ہیں کہ بعض صورتوں کے پیچھے بہت بڑا واقعہ، کوئی بہت بڑا انسیڈنٹ، کوئی کہانی موجود ہوتی ہے، بہت ہی الیبوریٹڈ کہانی. جیسے سورۃ التوبہ کے پیچھے بہت الیبوریٹڈ کہانی موجود ہے. سورۃ فتح آپ کو اس وقت اچھی طرح سمجھ آئے گی، بنا فتح نہ فتح لگا ہوگی نہ، پہلی آیت بھی اس طرح شروع ہوتی ہے. جب تک آپ کو وہ سارا واقعہ نہیں معلوم ہوگا کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ساتھ لے کر عمرہ کرنے کی نیت سے نکلے تھے، کون سے حالات تھے، کن حالات میں صلح حدیبیہ ہوا اور اس کے بعد سورۃ فتح نازل ہوئی، جب تک آپ کو اور مجھے وہ سارا بیک گراؤنڈ نہیں معلوم ہوگا ہم آیات کی گہرائی کو نہیں سمجھ سکیں گے. سورۃ الکہف کے پیچھے بھی کہانی ہے، لیکن اب یا تو ہم کہانی پر بات کر سکتے ہیں یا ہم سورۃ الکہف کی آیات پر بات کر سکتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ سورۃ الکہف کے اندر 4 بڑے واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور یہ جو 4 بڑے واقعات ہیں یہ چاروں ایک دوسرے سے کئی اینگل سے کنیکٹڈ ہیں. بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ بالکل الگ الگ ہیں، اور اگر آپ تاریخ میں ان کا مقام دیکھیں، ان چاروں واقعات کا، پوری ہسٹری کے اندر جو ہیومینٹی کی ہے، تو یہ آپ کو پورا ہسٹری میں اسکیٹرڈ نظر آتا ہے. ثابت طور پر میں بہت ڈیٹیل میں واقعات آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتی. آپ کو جو 4 واقعات سورۃ الکہف کے اندر ملتے ہیں، ان میں سب سے پہلا واقعہ کون سا ملتا ہے؟ پہلا سب سے پہلی کہانی کس کی ہے؟ اصحاب کہف کی کہانی آ رہی ہے. اور اصحاب کہف کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ان کا صرف مسلمانوں کے پاس قرآن کے ذریعے علم نہیں آیا. اصحاب کہف پیپل آف دا کیو یہ وہ لوگ تھے جو کہ رومن ہسٹری سے چلے آ رہے تھے. رومن ہسٹری کے اندر، ہیبرو ٹریڈیشن کے اندر، جوش ٹریڈیشن کے اندر ان کی کہانی ملتی تھی. قرآن میں آ کے اس کہانی کو اور فائن ٹیوننگ کر دی کہ جو ان کے پاس کہانی تھی وہ کہانی تھوڑی سی مختلف تھی. قرآن میں آ کر اس کی اسپیسیفکس ڈیٹیل جو تھیں وہ دے دی اور بات کو اور الیبوریٹ کر دیا. یہ اصحاب کہف کون تھے؟ اصل میں ایک بادشاہ تھا مختصر، اور وہ جو بادشاہ تھا وہ رومن ایمپائر اور گرین ایمپائر کے ساتھ جو تھا کنیکٹڈ تھا. ایک موقع کے اوپر اس بادشاہ نے اپنے उस पूरे एम्परर ने अपने उस किंगडम के अंदर एक बहुत बड़ा बुद्ध बनवाया था, और उसने ये कहा था अपने पूरे किंगडम से कि मेरे समेत ये पूरे किंगडम इस ग्रीक आइडल के सामने जो है वो बाव डाउन करेगी, सजदा करेगी। तो ये गुरचंद लोग थे, ये गुरचंद नौजवान थे जिन्होंने उस बुद्ध के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। लेकिन इन चंद नौजवानों के लिए आता ये है कि ये आम लोग नहीं थे, ये समझ लें कि पॉलिटिशियंस के बच्चे थे, जो हाई पोजीशन के पॉलिटिशियंस होते हैं उनके बच्चे थे। और होता ये था, ये वो दौर था जो कि आपको क्रिश्चियनिटी के अंदर मिलता है, क्रिश्चियन उस वक्त का ये मजहब जो था वो प्रोमिनेंट था, और ये अपने दौर के क्रिश्चियन थे जिनमें शिव पेनिट्रेट हो चुका था ग्रीक माइथोलॉजी की वजह से। जब इन चंद नौजवानों ने ये सोचा कि ये जो बुद्ध है ये हमारा उदार नहीं हो सकता, लेकिन क्रिश्चियनिटी की जो एक्चुअल तालीमात थी वो खो चुके थे, इनको प्रॉपरली डिवाइन रेवलेशन का इल्म नहीं था, बस ये इनके दिल में फितरत में ये चीज थी कि ये चीज हमारा मजहब नहीं हो सकता, ये बुद्ध हमारा खुदा नहीं हो सकता। तो जब बादशाह ने उस वक्त ये ऐलान किया कि सब ने इस बुद्ध के सामने आकर अपनी एलिजेंस देनी है, इन चंद लोगों ने सोचा कि हम ये काम नहीं कर सकते, और ये चंद नौजवान थे, यंग एज के नौजवान थे। जिस वक्त ये जो दौर था इसमें जो रिलीजन था उसका ताल्लुक या जो बादशाह था उसका एक बुद्ध के साथ इस तरह का रिलेशनशिप रखना, इसका ताल्लुक सिर्फ रिलीजन के साथ नहीं था बल्कि पॉलिटिक्स के साथ भी था। इसलिए आपको अगर किंगडम्स का थोड़ा सा भी अंदाजा हो तो जितने भी किंगडम्स होते हैं इसमें बादशाह की बात का इनकार जो है वो असल में ट्रीजन समझा जाता है, गद्दारी समझा जाता है। तो जब इन चंद नौजवानों ने इनकार कर दिया तो इसकी सजा जो थी वो डेथ पेनल्टी थी, कि नौजवानों को डेथ पेनल्टी दी जाएगी। लेकिन क्योंकि हाई पोजीशन एक तबके के लोग थे, एलीट क्लास से इनका ताल्लुक था, तो इनको इतनी कंसेशन दी गई कि ठीक है हम आपको एक चांस और दे रहे हैं ताकि आप अपनी इस्लाह कर लें, और जब आपको बुलाया जाए दोबारा तो आप आकर इस बुद्ध के सामने अपनी वफादारी का इजहार करें। इसलिए असल में बुद्ध के सामने वफादारी का इजहार बादशाह से एलिजेंस का इजहार होगा। और होता यह है कि ये छोटे से लोग जो हमेशा से माशरे के अंदर अगेंस्ट द क्राउड अगेंस्ट द फ्लो जाते हैं, ये उस वक्त की पावर मैच के लिए खतरा होते हैं। इसलिए कि अगर आज जान ने इनकार किया तो चांसेस यही है कि मुस्तकबिल में इनके पीछे 10-15 और चल पड़ेंगे। तो बादशाह को इनसे खौफ था, बादशाह ने इसीलिए इनको एक कंसेशन दिया, ड्यू टू बीइंग इन द हाई क्लास इन द एलीट क्लास, ठीक है हम फौरन आप पर डेथ पेनल्टी नहीं लगाते, आप टाइम ले लें, लेकिन आपको उस टाइम पीरियड के बाद आकर वही करना होगा जो बाकी कौन ने किया है। कि जो इनको कंसेशन पीरियड मिला उस ड्यूरेशन में इन चंद नौजवानों ने ये डिसाइड किया कि ये इलाका छोड़कर चले जाएंगे। उस वक्त ये इलाका छोड़कर गए और फिर इन्होंने जाकर जिस बार के अंदर पनाह ली और फिर ये अल्लाह ताला के हुक्म से, क्योंकि ये अल्लाह की खातिर हिजरत करके नहीं गए थे, इनको नहीं मालूम था कि असल में अल्लाह की इबादत की कैसे जाती है, इनको अल्लाह की प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट भी नहीं थी, इसलिए इनके टाइम पीरियड में आसपास कोई नबी नहीं था, तो इनके पास वो तालीमात प्रॉपरली पहुंची नहीं थी। लेकिन वो दिल सलामत था, दिल में अल्लाह था, इसलिए हर दिल में अल्लाह होता है। याद रखिए बाय नेचर बाय फितर आप हम सब एक ही जैसे हैं, हमारी शक्लें मुख्तलिफ हैं, हमारे एक दूसरे के साथ आदात का थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन अगर आप फितरत की बात करें तो फितरत या यकीन रखें फितरत पाकिस्तान में रहने वाले की हो या ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले की हो या इंडिया में रहने वाले की हो या वेस्टर्न कंट्रीज में रहने वाले की हो या मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में रहने वालों की हो, बाय फितरत हम सब एक जैसे हैं, हम सब की फितरत एक जैसी, इसलिए अल्लाह ने हमें एक ही तरह की फितरत से बनाया है। अगर हम एक फितरत के ना होते तो कुरान इंसानियत के लिए नहीं आता। अगर मुसलमानों की फितरत अलग होती इसको आप नेचर भी कह सकते हैं, अगर मुसलमानों की फितरत अलग होती, हिंदुओं की फितरत अलग होती, बनी इसराइलियों की फितरत अलग होती, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुरान दिया गया है उसके लिए नहीं कहा जाता कि हुदन लिन्नास, ये इंसानियत के लिए हिदायत है। इंसानियत की हिदायत इसका मतलब है कि हर इंसान को एक ही तरह अपील कर सकता है। हम सब एक दूसरे से मुख्तलिफ इसलिए होते हैं कि हमारे हालात, हमारा माहौल, हमारी क्वालिफिकेशन, हमारे माँ बाप के साथ हमारी ग्रूमिंग, हमारे जो सिबलिंग्स होते हैं उनके साथ हमारा उठना बैठना रहन सहन ये हमें आदतन मुख्तलिफ कर देता है, और वो जो अल्लाह की पहचान है, जो फितरत है जिसको कुरान अपील करता है, वो सबके अंदर है, वो कहीं छुप जाती है, वो कहीं दब जाती है। आप देखिए कुरान में मिसाल आती है ना पत्थरों की, सूरह बकरा में, कि बास पत्थर ऐसे हैं जो बर्स्ट होकर एकदम से फट जाते हैं, बास पत्थर ऐसे हैं जिसमें क्रैक आ जाता है, और बास पत्थर ऐसे हैं जो गिर जाते हैं। एक्चुअली वो पत्थरों का पैराबल तो है, लेकिन वो तो दिलों का पैराबल है, क्योंकि अल्लाह ताला ने वहां पर इंसान के दिल की मुख्तलिफ कैफियात बयान की है। तो ये वो लोग थे, ये जो चंद नौजवान थे जिनको आप असहाबे कहफ के नाम से जानते हैं, ये वो लोग थे जिनकी फितरत सलामत थी। इसलिए माहौल प्रोवर्टेड होने के बावजूद इनके अंदर से फितरत ने कहा कि ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो सकता, क्या ठीक है और क्या गलत है आपको अंदर से आपकी फितरत बताती है। हमें भी जब बाजू का कंफ्यूजन हो रहा होता है कि हम ये काम करें या ना करें, करें या ना करें, बाजूकात आप एक कश्मकश की कैफियत में होते हैं, हालात की वजह से, फैमिली प्रेशर की वजह से, औलाद के प्रेशर की वजह से आप चीजों को डिसाइड नहीं कर पा रही होती। लेकिन ये जो आपकी कश्मकश होती है इसमें आपके अंदर से एक आवाज डोमिनेंटली आ रही होती है जो आपको बताती है कि क्या आप ये काम करें या ना करें। वो अंदर से जो आवाज आ रही है वो आपकी फितरत होती है। हमारा मसला ये हम फितरत का गला घोट कर दबा देते हैं और उसको हम इतना वीक कर देते हैं कि वो फिर स्टैंड लेने के काबिल नहीं रहती। ये वो लोग थे जिनकी फितरत सलामत थी, इसलिए इन्होंने अल्लाह पर, इलाह पर भरोसा किया और ये इस बार में जाकर छुप गए। एक तरह के फ्यूजिटिव्स हो गए ना, छुप गए जाके, वरना अगर देख लिए जाते तो पकड़े जाते, और पकड़ लिए जाते तो अपनी प्रिजन की वजह से इनको मार दिया जाता, डेथ पेनल्टी दे दी जाती। अब वो ये कि अल्लाह ताला ने मिराकुलसली इन नौजवानों को तकरीबन 300 साल के लिए सुला दिया। 300 साल तकरीबन जो आपको बता रही हूँ, जो काउंट आपको सूरह काहफ में मिलता है, अगर हम इसको एक राउंड फिगर में देखें तो 300 साल के लिए अल्लाह ताला ने इनको सुला दिया। और आप जानते हैं कि जब ये उठे हैं 300 साल के बाद, तो जो पहली चीज इन्होंने फील की वो भूख थी, भूख लगी इनको। तो अपनी जेब में से एक ने करेंसी निकालकर अपने एक दोस्त को दी कि तुम बाजार जाओ और जाकर कुछ खाने पीने का सामान लेकर आ जाओ, देखो बी केयरफुल कहीं हम पकड़े ना जाए। तो जब ये शख्स 300 साल पुराना शख्स वापस उस बाजार में पहुंचा है जिसको समझ रहा था कि मैं अभी उठा हूँ और बाजार में गया हूँ, वहां पर जब ये आया तो ये शख्स वहां पर पहचाना नहीं जा रहा था, बिकॉज ये 300 साल पुराना शख्स था। इसका जो लिबास था वो पता चल रहा था कि वो माशरे में ब्लेंड इन करने वाला नहीं है। आप इमेजिन करें इस वक्त कोई पाकिस्तान जो अगर 300 साल पहले नहीं था, लेकिन आप इमेजिन करें कि किसी भी इलाके का रहने वाला 300 साल पुराना शख्स यहाँ आके खड़ा हो जाए, तो वो आपको लिबास के एतबार से, अपनी ड्रेसिंग के एतबार से फौरन एक अनयूजुअल सा बंदा लगेगा। तो ना सिर्फ इस शख्स का लिबास अलग था, इसकी जुबान 300 साल पुरानी अंग्रेजी अगर आज कोई बोले, या 300 साल पहले उर्दू तो मेरा ख्याल थी नहीं, अगर कोई 300 साल पहली जुबान आप बोलना शुरू कर दे तो आपको मुझे समझ नहीं आएगी, आप और मैं तो अगर 100 साल पुरानी उर्दू भी सुने तो हमें समझ नहीं आएगी, इतनी मुश्किल होती थी। तो आप इमेजिन करिए लिबास मुख्तलिफ, जुबान मुख्तलिफ, फिर जो उसने करेंसी निकाल के दिखाई वो करेंसी अब इस्तेमाल ही नहीं होती थी। तो दैट वाज अमेरिकन प्रॉब्लम। तो बाहर वो पूरी कहानी फिर आप जानते हैं कि उसके बाद फिर वो एक मिस्ट्री थी जो सॉल्व हो गई, ये वापस गया, फिर अल्लाह ताला ने इनको फिजिकल डेथ दी, और उसके बाद जो था बाहर के लोगों ने इनके ऊपर जो थी वो दीवार बना दी। एक कहानी सूरह कहफ में आपको इन चंद नौजवानों की मिलती है जिन्होंने अल्लाह को ढूंढने के लिए स्टैंड लिया, एक ये लोग हैं, और अल्लाह ताला ने मौजूदाना तौर पर इनको 300 साल के लिए सुला दिया। दूसरी कहानी इसके अंदर कौन सी है, दो लोगों की, मसलन रजुलैन, दो मर्दों की, दो लोगों की जिनके पास बाग थे, जिनमें से एक के पास बाग थे। बाज मुफस्सरीन लिखते हैं कि प्रॉपर्टी टू सम एक्सटेंट दोनों के पास थी, लेकिन एक की प्रॉपर्टी को मेंशन किया गया और एक की प्रॉपर्टी इतनी मामूली थी कि उसको मेंशन करना जो है वो मुनासिब नहीं समझा गया। जैसे अरबी जुबान में कहते हैं रुबा सुकून अगला कल कलाम, कभी कभी खामोशी आपको बहुत कुछ बता जाती है। तो ये जो दो लोगों की मिसाल आपको सूरतुल काहफ में मिलती है, दूसरी कहानी इसमें दो लोगों की कहानी बताई गई। جن میں سے ایک ایسا تھا جو بہت مان رکھتا تھا, دنیاوی لحاظ سے اس کے پاس پرفیکٹ ریسورسز تھے. اس کے دو باغوں کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دو باغ دیے تھے, اور وہ دو باغ بھی ایسے تھے کہ جن کے درمیان میں دریا بہتا تھا, درمیان میں اس کے جو تھی وہ پانی کی ابنڈنس تھی. آپ دیکھیں باغ کو مینٹین کرنا آسان نہیں ہوتا ہے. آپ میں سے جن کے گھروں میں باغ ہوں گے آپ کو اندازہ ہوگا, پھر کراچی شہر میں رہتے ہوئے اور پھر مجھے نہیں پتا باقی جگہوں پر کیا حال ہے, بیچارہ بیسمنٹ میں تو شاید پانی شاید ہی کبھی آتا ہے, ورنہ تو ٹینکرز پہ ہم لوگ گزارا کرتے ہیں. تو باغ مینٹین کرنا آسان نہیں ہوتا ہے, اور یہ باغ کوئی گھر کا باغ نہیں تھا, یہ تو اس کی ایک طرح کی سورس آف انکم تھا, اس کا پورا جو تھا ایک فارم ہاؤس تھا. تو جب باغ کو چلانے کے لیے بیسک چیز چاہیے ہوتی ہے وہ پانی ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ کیسی پراپرٹی دی تھی جو ہر لحاظ سے سپر پرفیکٹ 100% پروڈکٹیویٹی دینے والی تھی. اس لیے جو سب سے پہلی چیز تھی پانی, وہ خود درمیان میں سے بہتا تھا دونوں باغوں کے. ورنہ آپ سوچیں نا, اس دور کے لوگوں کو پانی کیری کرنے کے لیے لوگ چاہیے ہوتے تھے, جانور چاہیے ہوتے تھے, تو وہ ایک جگہ دور جا کے جانور پہلے دریا کے پاس پانی لے کر آئے, پانی کو کیری کریں, پھر وہ جانوروں کو آرام کراتے تھے, پھر پانی اسپرنکل کرنے کے لیے جانور استعمال ہوتے تھے. اس سارے حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بچایا ہوا تھا, اور اللہ نے اس کے جو دونوں باغوں کے درمیان میں پانی دیا تھا وہ دریا کی شکل میں تھا, یعنی ابنڈنٹ سپلائی تھی, رکتی نہیں تھی. نہر تو کبھی رک بھی جاتی ہے, بارش نہیں ہو رہی تو نہر میں پانی نہیں آیا, کنال میں پانی نہیں آیا. دریا کے الفاظ اس کے لیے آتے ہیں عربی زبان میں, کہ جو دریا بہتا تھا وہ ابنڈنٹ سپلائی آف واٹر کے ساتھ بہتا تھا. پھر اگر آپ اسی سورہ کہف میں اسی باغ کا ڈسکرپشن پڑھیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ اتنا پرفیکٹ باغ تھا کہ اس کے لیے جو اس کے درخت میں جو پھل لگتا تھا, اکلہا کے الفاظ آتے ہیں, ثمرہا کے الفاظ نہیں آتے. حالانکہ پھل کے لیے عربی زبان میں لفظ آتا ہے ثمر, ثمر کہتے ہیں, ثمرات کہتے ہیں پھلوں کو, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے پھلوں کا جو لفظ استعمال کیا وہ اکلہا استعمال کیا, یعنی اس کا ہر پھل آپ امیجن کریں, ایک درخت ہے اس پر 500 آم لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے اکلہا, اس کا مطلب ہے اس کے درخت کا ہر پھل ایٹیبل تھا, کھانے کے قابل تھا. یعنی مثال کے طور پر جب سیب کا درخت ہے تو جتنے بھی سیب لگیں گے نہ کوئی اس میں وقت سے پہلے ٹوٹے گا, نہ کسی میں کیڑا لگے گا, نہ کوئی کچائی رہ جائے گا, بلکہ پراپرلی رائپ ہونے والے پھل اس کے اوپر لگتے تھے. تو جو اللہ نے اس کو باغ دیا ہوا تھا وہ بالکل پرفیکٹ باغ تھا, اور اپنی 100% پروڈکٹیویٹی دیتا تھا, تو بہت مالدار انسان تھا, بہترین ریسورسز رکھتا تھا. لیکن ایشو کیا تھا؟ ایٹیٹیوڈ کا ایشو تھا. اس لیے جو اس کے ساتھ دوسرا انسان تھا, یہ جانتا تھا کہ اس کے پاس اتنی بڑی کوئی پراپرٹی نہیں ہے, اس کے پاس کوئی اتنا بڑا باغ نہیں ہے. ایٹیٹیوڈ ایشو کیا تھا؟ جو اکثر ہم خواتین میں بہت زیادہ ہوتا ہے, یہاں تو دو مردوں کا ذکر ہے لیکن اصل میں یہ بیماری خواتین کی ہے, اور خواتین مردوں میں بھی ہوتی ہے, لیکن یہ نہیں کیونکہ ہم سب خواتین یہاں بیٹھی ہیں تو ہم میں یہ زیادہ بیماری ہوتی ہے. آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا خواتین آپس میں باتیں کرتی ہیں, مثال کے طور پر بیٹے کی شادی ہو رہی ہے اور وہ پھر گفتگو میں بتا رہی ہیں, یا بیٹی کی شادی ہو رہی ہے اور گفتگو میں بتایا جا رہا ہے کہ بھائی ہم نے تو کہا تھا کہ ہم مثال کے طور پر بس 50 میں کھانا کر لیں گے. اب 50 کا مطلب کیا؟ 50,000. ہم نے تو سوچا تھا بس ہم بیٹی کا کھانا 50 میں کر لیں گے, مگر کیا کریں, وہ اتنے سارے مہمان بلاتے بلاتے بات ون اسٹیپ چلی گئی, ون اسٹیپ چلی گئی, 1,000 کی چلی, 1,00,000 کی چلی. ابھی گفتگو ہو رہی ہے, اور گفتگو کس سے ہو رہی ہے؟ جو برابر میں خاتون بیٹھی ہیں ان کی اپنی 5 بیٹیاں ہیں, مثال کے طور پر یہ جانتی ہیں کہ ان کی 5 بیٹیاں ہیں, اور مشکل سے وہ اپنی بیٹیوں کو ایجوکیٹ کر رہی ہیں, یا بچوں کی ایجوکیشن پہ خرچ کر رہی ہیں, بمشکل ان کا گزارا ہو رہا ہے. لیکن یہ جو خاتون بیٹی یہ بات کر رہی ہیں, بھائی کیا کروں, بیٹی سے محبت کا اظہار تو کرنا تھا نا, آخر بیٹی ہے, خواہش تو پوری کریں گے نا اس کی, یہ کون سا ایٹیٹیوڈ ہے؟ اور اگر آپ ان کو اکیلے میں لے جا کر سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ اچھا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے, تو میں نے کوئی بوسٹنگ تھوڑی کی ہے, میں تو فیکٹ بتا رہی ہوں. ہم غلطی 50 خرچ کرنا چاہتے تھے, بہت آرام سے ہمارے یہاں شادیوں کے جوڑوں کی بوسٹنگ نہیں ہوتی, شادی کا جوڑا کتنے کا بنایا بہو کا؟ بس 25 کا. کیا مطلب 25 کا؟ This is ridiculous कि शादी का जोड़ा 25 का बन रहा है. माँ खुद माँ की जो लड़की की माँ होती है, लड़की की माँ, उसको आधा हार्ट फेल हो जाता है फिर उसको पता चल जाए कि उसकी बेटी का जोड़ा उसकी होने वाली सास जैन मार्केट से लेकर आ रही है. बोस्टिंग करने की बीमारी हमें है, लड़कियों की माए भी बोस्टिंग करनी है. हमें पता उसके ससुराल वालों ने कितना खर्च किया, कितना खर्च. ये एटीट्यूड है. आप यहाँ देखें इस सूरह कहफ के अंदर जो अल्फाज आए हैं वो आए हैं वहुवा युहाविरुहु अना अक्सरु मिनका माला. ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन उसने एटीट्यूड शो किया. एटीट्यूड शो करने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास तो बाप भी नहीं है, देखो मेरे पास तो बाप है, ये कहा नहीं. बट वहुवा युहाविरुहु, हावरा युहाविरुहु होते हैं टू कॉन्वर्सेट विद समवन, मुकालमा करते हुए, गुफ्तगू करते हुए, कॉन्वर्सेशन करते करते कह दिया. हम तो छुट्टियां गुजार में यहाँ गए थे तो कहा गए थे, अच्छा मरी अब तो वहां पुराना हो गया, हम तो स्विट्जरलैंड गए थे. व्हाट इज दिस एटीट्यूड? यही एटीट्यूड है जो यहाँ बताया जा रहा है. और फिर क्या हुआ इस शख्स के साथ जो अपना एक बॉडी लैंग्वेज से अपना बोस्टिंग एटीट्यूड एरोगेंस शो कर रहा था? अल्लाह ताला ने इस इंसान के जरिए भी इसको कहा. आप देखिए मजलूम के दिल से जब आंख निकलती है तो वो अश्कत जाती है. इस शख्स ने इसको कहा था कि इतना मत इतराओ कि अल्लाह ताला तुम पर से ये नेमतें वापस ले ले. और यही हुआ. ओवरनाइट रातों रात आसमान के ऊपर से ताइफा एक फरिश्तों का कोई ग्रुप आया, अल्लाह के हुक्म से इसका बाप सुबह उठते साथ दोनों के दोनों बाप बिल्कुल बैरन हो गए थे. कोई इंसान ये काम नहीं कर सकता, अल्लाह के हुक्म से ये हुआ. बिल्कुल इसके बाप जो थे वो बैरन हो गए, खत्म हो गए. ये हुआ इस शख्स के साथ. और जो इसने कहा फिर उसके बाद रिग्रेट करते हुए इसने कहा वला उशरिकु बिरब्बी अहदा, काश मैं ये शिर्क ना करता. हालांकि कौन सा शिर्क किया था इसने? इसने ये तो नहीं कहा था कि मैं अल्लाह को सजदा नहीं करूंगा, मैं अपने बाप को सजदा करूंगा. ये किस चीज का शिर्क था? ये तकब्बुर का शिर्क था, या अपने रिसोर्सेज के ऊपर अलायंस रखने का, अपने रिसोर्सेज पर तवक्कुल करने का शिर्क था, ये एटीट्यूड का शिर्क था. बाज़ोकात हम ये नहीं कहते हैं कि हम अल्लाह की जगह किसी और की इबादत करते हैं, इसके लिए तो हम सब मानते नहीं है कि हम शिर्क करते हैं. हालांकि हम में से हर एक को शिर्क से वैसे ही बचना चाहिए जैसे कि किसी मुशरिक को शिर्क से बचना चाहिए. इसलिए जो शिर्क के जली होता है, जो ऑब्वियस शिर्क होता है, वो तो आंखों से नजर आ रहा होता है. तो इंसान की गलती आंखों से नजर आती है तो इंसान उसको रेक्टिफाई कर सकता है. लेकिन वो गलती जो आपको नजर ही नहीं आ रही आंखों से, उसको रेक्टिफाई करना भी मुश्किल होता है. हमारे बुत हमारी नजरों के सामने नहीं है, हमारे बुत हमारे दिलों के अंदर है, हमारे बुत हमारे एटीट्यूड्स के अंदर है, हमारे बुत जो है वो हमारे दिमागों के अंदर है, हमारे रवैयों के अंदर है. हम में से कोई भी नहीं कहता है कि हमने माल को या हमने वेल्थ को या हमने अपने सोशल स्टेटस को इलाह बनाया हुआ है, इसलिए हम सोशल स्टेटस को सरदर थोड़ी करते हैं. आप पढ़े सूरह बकरा, अल्लाह ताला ने वहां फरमाया है वामिन नासी, और लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं मैयताखिदु, जो बना देते हैं मैयताखिदु औलिया अल्लाह, नहीं जो अल्लाह के अलावा इलाह बना लेते हैं, अंदाज मद्दे मुकाबिल बना लेते हैं, राइवल्स बना लेते हैं. तो आपका सोशल एटिकेट, आपका सोशल स्टेटस, आपका माल अल्लाह के खिलाफ राइवल कैसे बन सकता है, अंदाज कैसे बन सकता है? अल्लाह कहता है वो उनको सजदा नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं युहिब्बूनहु कहुब्बिल्लाह, वो उनसे मोहब्बत ऐसे करते हैं जैसे अल्लाह से मोहब्बत है. ये है इशू. अपना सोशल स्टेटस इतना अच्छा लगे कि कहीं वो खो ना जाए, अपना घर इतना अच्छा लगे कि कहीं मैं इसको छोड़ के निकलूं तो ये निगलेक्ट ना हो जाए, अपना रवैया एहसास ही ना हो कि किस वक्त वो शिप के अंदर बदल गया. ये प्रॉब्लम है, इसको देखने की जरूरत है. तो इस शख्स का जो शिप था वो इसके एटीट्यूड का शिप था, वो इसके अपने दुनियावी रिसोर्सेज के ऊपर ट्रस्ट करने का शिप था, अपनी दुनिया को सब कुछ समझने का शिर्क था, जिसकी सजा क्या मिली कि अल्लाह ताला ने ओवरनाइट इसके दोनों बापों को तबाह और बर्बाद कर दिया. तीसरी कहानी आपको सूरह कहफ के अंदर कौन से मिलती है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की और हजरत खिज़र की. हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए आता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर कौन सी किताब नाजिल की गई थी? तौरात नाजिल की गई थी.
और आप पूरी हिस्ट्री वेस्टर्न हिस्ट्री उठाकर पढ़ लीजिए, पूरी वेस्टर्न हिस्ट्री में जो सबसे बड़ा स्कॉलरशिप का डॉक्यूमेंट माना जाता है वो कौन सा डॉक्यूमेंट? तौरात, बाइबल। इसलिए तौरात और बाइबल साथ साथ चलते हैं। आपकी पूरे ज्यूइश अकाउंट में वेस्टर्न हिस्ट्री में जो सबसे कंप्लीट ऑथेंटिक स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट कंप्लीट डॉक्यूमेंट समझा जाता है वो तौरात समझी जाती है। मूसा अलैहि सलाम कुरान से पहले तक के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तक के सबसे बड़े स्कॉलर थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको एक वाक्य की वजह से, कॉन्वर्सेशन की वजह से कहा कि मूसा आप भी इल्म हासिल करें, आप भी सीखें, और सीखने के लिए अल्लाह ताला ने उनको डायरेक्शन दी कि फलां शख्स की तलाश में जाइए। और वो जो बड़ी मुश्किल से मूसा अलैहि सलाम जो है, वो सारी कहानी आपको सूरह काहफ में मिल जाती है कि उनके साथ उनका गुलाम था और फिर वो मछली जहां पर जान निकलनी थी वो जगह थी जहां पर पता चलता, वो मिस आउट हुआ, फिर वो वापस आए। बहरहाल मूसा अलैहि सलाम को किसी क्लासरूम के अंदर एजुकेट नहीं किया गया, किसी यूनिवर्सिटी में एजुकेट नहीं किया गया, मूसा अलैहि सलाम को डायरेक्ट प्रैक्टिकल लाइफ से एजुकेट किया गया। और मूसा अलैहि सलाम वो शख्स थे, मूसा अलैहि सलाम की अगर आपको सारी बैकग्राउंड हिस्ट्री मालूम हो कि मूसा अलैहि सलाम देखकर फौरन एक्शन लेने वालों में से थे, चाहे वो मामला हो मदीन से वापसी पर जब वो बैठकर इंतजार कर रहे थे और थक गए थे, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कर रहे थे कि उन्होंने देखा कि चंद दो लड़कियां जो हैं वो अपनी बारी के इंतजार में बहुत देर से खड़ी हुई हैं, तो वो ऐसा नहीं था कि वो उनको जाके तकलीर करना शुरू कर देते, जो वहां मर्द थे उनको साथ टाइम नहीं दे रहे थे लड़कियों को, उन्होंने वहां जाके स्पीच नहीं करनी शुरू कर दी। मूसा अलैहि सलाम की शख्सियत में फौरन एक्शन लेने वाली आपको क्वालिटी नजर आती है, उनको जहां लगता था कि यहां पर फौरन एक्शन लेना चाहिए वो एक्शन लेते थे। तो उन्होंने क्या किया, सिंपली बाल्टियां उठाई उन लड़कियों की और जाकर पानी भरकर उनको दे भी दिया और घर तक छोड़ दिया है। इसी तरह मूसा अलैहि सलाम की यही तबीयत आपको कैसे नजर आती है कि मूसा अलैहि सलाम से वो जो एक मदद के लिए एक शख्स ने लड़ाई में पुकारा और मूसा अलैहि सलाम ने फौरन जाकर उस कब्ती को एक पंच मारा और उसके बाद उसका कत्ल हो गया। इसलिए ताकतवर इंसान थे मूसा अलैहि सलाम। और अगर आप मूसा अलैहि सलाम की बायोग्राफी पढ़ें और आप अगर सीरत उमर रदी अल्लाह अन्हु पढ़ें तो आपको हजरत उमर और हजरत मूसा के अंदर बहुत सी चीजों का कंपैरिजन नजर आता है। मिलती जुलती तबीयत थी, फौरन एक्शन लेने वाले, तो मूसा अलैहि सलाम की ऐसी तबीयत थी, इसलिए अल्लाह ताला ने उनको मजीद हिकमत सिखाने के लिए इस एक इल्म हासिल करने के सफर के ऊपर रवाना किया। ये जो सफर इल्म का करना था ये मूसा अलैहि सलाम को करना था हजरत खिजर के साथ। अब जब हजरत खिजर के साथ मूसा अलैहि सलाम आए तो हजरत खिजर ने कहा कि देखें आप सब्र नहीं कर सकते, इसलिए कि जो तरीका कार मेरे से खाने का होगा वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आप इमेजिन करें कि बहुत मूसा से कह रहे हैं जो उस वक्त के सबसे बड़े स्कॉलर थे, जो बेहतरीन रसूल थे, जलीलुल कदर रसूल, और उनके पास वो बेहतरीन कुरान का इल्म था, इसलिए कि कुरान से पहले तक का जो कंप्लीट डॉक्यूमेंट था स्कॉलरशिप का वो यही दौरा थी। मूसा अलैहि सलाम ने कहा सतजिदूनी इंशा अल्लाह साबिर, आप मुझे इंशाअल्लाह साबिर पाएंगे। अगर आपको मालूम है ये सफर शुरू हुआ मूसा अलैहि सलाम हजरत खिजर के साथ सबसे पहले एक कश्ती में सवार हुए, और जब जिस कश्ती में सवार हुए ये कश्ती चंद नौजवानों की थी। खिजर जो हजरत खिजर थे ये मूसा को लेकर समझ लें कि कश्ती के लोअर डेक में चले गए और वहां से कुछ वुडन प्लैंक्स जो होते हैं, लकड़ी के जो प्लैंक्स होते हैं, अगर आपने कभी लकड़ी की बोर्ड देखी हो तो स्ट्रेट बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनल लकड़ियां होती है जिनको पैरेलल पैरेलल लगाया होता है। तो जो इसको डिस्क्राइब करते हैं स्कॉलर्स वो बताते हैं कि हजरत खिजर ने कुछ वुडन प्लैंक्स को निकालना शुरू कर दिया। अब क्योंकि कश्ती चल रही थी तो जैसे ही आप वुडन प्लैंक्स निकालेंगे तो पानी अंदर आ जाएगा, तो जैसे ही इन्होंने लकड़ी निकाली और पानी अंदर आया तो मूसा अलैहि सलाम ने फौरन कहा अखरक्तहा, आपने तो इसको एबदार कर दिया। हालांकि हजरत खिजर ने जो सबसे पहली कंडीशन मूसा अलैहि सलाम पर लगाई थी वो ये लगाई थी कि आप मुझसे कोई सवाल नहीं करें, तो पहला सवाल ही मूसा अलैहि सलाम ने कर दिया अखरक्तहा, आपने तो इसको एबदार कर दिया। क्यों एबदार कर दिया? लीतो गरीबा अहला, ताकि आप इन सारे कश्ती वालों को डुबो दें। तो बहरहाल वो कश्ती उस पानी के अंदर आने की वजह से साइड पर आई, वो सारे उतर गए और हजरत खिजर ने कहा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। बहरहाल मूसा अलैहि सलाम ने कहा ओके ओके मैं दोबारा आपसे कोई सवाल नहीं करूंगा। कुछ और आगे गए तो उनको एक नौजवान वहां पर बच्चा मिला, उस बच्चे को क्या किया हजरत खिजर ने उस बच्चे का मर्डर कर दिया। अब इसके ऊपर मूसा अलैहि सलाम ने क्या कहा, फिर सवाल किया आप कतलता, आपने क्या इसको पता ही कर दिया? इसलिए कि मना किया था सवाल नहीं करना, फिर उन्होंने सवाल कर लिया। इसके ऊपर हजरत फैजल ने दोबारा कहा कि देखिए आपके लिए आसान नहीं है, लन तस्तती आहिया सबरा, आप इनके साथ सबर नहीं कर सकते। तो मूसा अलैहि सलाम ने कहा कि अच्छा मुझे एक चांस और देना है, एक चांस और दे, मैं आपके साथ सबर करूंगा। कुछ और आगे गए तो अब जिस इलाके में ये लोग गए उस इलाके के लोगों के लिए आते हैं कि बहुत ही रूड थे, जिसको आप कहते हैं ना कि वो जनरल कॉमन हॉस्पिटैलिटी भी उनके अंदर नहीं थी। जैसे अगर कोई बहुत दूर से भागता हुआ है और आप देख रहे हैं बहुत दूर से भागता हुआ आ रहा है, गर्मी का मौसम है और बेचारा बिल्कुल जो है वो पसीने से शराबूर है, वो कहते हैं प्लीज पानी दे दे, प्लीज पानी, आपके मैं नहीं पानी दे रही, जाओ यहाँ से भाग जाओ। ये बिल्कुल जनरल कर्टेसी जिसको आप कहते हैं ना कॉमन कर्टेसी, इन लोगों के अंदर वो भी हजरत मूसा को और हजरत खिजर को नजर नहीं आए। इतने रूड लोग थे कि जो बिल्कुल ख्याल करने वाले नहीं थे। इसी इलाके में हजरत मूसा ने और हजरत खिजर ने एक दीवार देखी जो ऑलमोस्ट गिर रही थी, ऑलमोस्ट गिर चुकी थी और बिल्कुल थोड़ी सी रह गई थी। तो हजरत मूसा के साथ मिलकर हजरत खिजर ने वो दीवार बनानी शुरू कर दी। जो मुफस्सरीन लिखते हैं वो लिखते हैं कि तकरीबन एक दिन लगा हजरत मूसा और हजरत खिजर को इस दीवार को खड़ा करने में। अब आप देखें ना दीवार बनाना आसान काम तो नहीं है, वो मट्टी कहीं से लेकर आते होंगे, फिर पानी डालते होंगे, फिर उसमें इकट्ठा करते होंगे, फिर कहीं से पत्थर ढूंढ के उसको दीवार बनाते होंगे। तो जो मुफस्सरीन उसको इलैबोरेटेड फॉर्म में बताते हैं वो कहते हैं कि इन दोनों को ये दीवार बनाने में तकरीबन एक दिन लग गया। आप इमेजिन करें सफर करते हुए आ रहे थे, इलाके वालों ने कोई खाना नहीं दिया था, कोई मेहमान नवाजी नहीं की थी, कोई हॉस्पिटैलिटी शो नहीं की थी, उसके ऊपर भी एक दिन लगाकर इन्होंने दीवार खड़ी कर दी। बस मुफस्सरीन कहते हैं कि मूसा अलैहि सलाम ने समझा होगा कि शायद हजरत खिजर टीम के साथ कोई कमिटमेंट है, तो चलो मैं तो इसके साथ ही, मैं भी ये काम करने में इनका हेल्प आउट कर देता हूँ। तो जब दीवार बन गई तो हजरत खिजर ने फिर सफर शुरू कर दिया। तो मूसा अलैहि सलाम हैरान हो गए कि ये क्या मतलब है, जब आप काम करते हैं, अब यहाँ पर हम बैठे हुए हैं बजाय हम कोई काम नहीं कर रहे, लेकिन हमें पता है जब हम घर से निकल के वापस घर में जाते हैं तो चाहे हम कोई काम करके ना जाए कुछ हल्का फुल्का मन जिम करने का, एटलीस्ट चाय पीने का तो दिल करता ही करता है। तो अब इनका इमेजिन करें कि उन्होंने पूरे दिन लगाकर दीवार बनाई, मेहनत की, अब भूख तो लग रही होगी। तो मूसा अलैहि सलाम ने इनसे कहा, सवाल नहीं किया, मूसा अलैहि सलाम कितने जीनियस थे, दो सवाल कर चुके थे, आखरा कताहा क्या आपने इसको अहदार कर दिया, आकतलता क्या आपने इसको कतल कर दिया। अब थर्ड टाइम जो मूसा अलैहि सलाम ने कहा तो सवाल नहीं किया था मूसा अलैहि सलाम ने, मूसा अलैहि सलाम ने कहा काला लौशी तला तफस्ता अलैहि अजरा, अगर आप चाहते तो आप इसके ऊपर थोड़ी सी उजरत एटलीस्ट खाना तो ले ही सकते थे। उन्होंने बस इतनी बात की, लेकिन हजरत खिजर ने कहा कि बस अब आपका और मेरा सफर जो है वो यहीं तक मुकम्मल हो गया और मैं आपको अब सिखाता हूँ उन तीन वाकयात की हिकमत जिसके लिए अल्लाह ताला ने मुझे आपकी तरफ डायरेक्ट किया था। और वो जो मूसा अलैहि सलाम की नेचर थी जो मैंने आपके सामने रखी थी कि वो फौरन एक्शन लेने वाले थे, वो हजरत खिजर के साथ इसलिए अप्लाई नहीं कर सके कि अल्लाह ताला ने हजरत खिजर के साथ अपॉइंट किया था। वरना आप सोचें कि एक शख्स लड़ाई में हेल्प के लिए बुलाता है और मूसा अलैहि सलाम भाग कर जाते हैं और दूसरे को पंच मार देते हैं, तो जब इन्होंने खिजर को कत्ल करते हुए देखा होगा तो उनको कितना गुस्सा आया होगा कि नहीं। लेकिन इनकी नेचर में था कि फौरन एक्शन लेते थे, लेकिन इन्होंने सबर किया, इन्होंने अपने आप को काम डाउन किया इसलिए कि अल्लाह ताला ने इनको अपॉइंट किया था। और अल्लाह ताला मूसा अलैहि सलाम को यही बताना चाहता था कि आपसे बढ़कर भी इल्म वाले इस दुनिया में मौजूद हैं। हजरत खिजर ने फिर ये सारी जो तीनों वाकयात थे इनकी हिकमत मूसा अलैहि सलाम को बताई कि मैंने कश्ती को ऐबदार इसलिए किया था क्योंकि वो चंद नौजवानों की थी जो मेहनत करके मछलियां पकड़ते थे और अपना रोजगार चलाते थे, लेकिन जिस इलाके में ये जा रहे थे वहां के बादशाह को अपनी आर्मी को एक्सपेंड करने के लिए कश्तियां चाहिए थी और उस इलाके में जिसकी भी अच्छी कश्ती आती थी बादशाह उसको कॉन्फिस्केट कर लेता था। तो इसलिए मैंने अल्लाह के हुक्म से उस कश्ती को इतना ऐबदार कर लिया कि बाद में नौजवान इसको ठीक भी कर ले और जो बादशाह है वो इसको अपनी आर्मी का हिस्सा बनाकर इनसे कश्ती छीन ना ले। दूसरा वाकया जो हुआ था जिसमें उन्होंने एक बच्चे को कत्ल किया था, उसकी हिकमत हजरत खिजर ने यह बताई कि अल्लाह ताला ने मुझे उस बच्चे को कत्ल करने का हुक्म दिया इसलिए कि वो बच्चा बड़ा होके माँ बाप का नाफरमान होता, तो अल्लाह ताला ने उन माँ बाप को आजमाइश से बचा लिया और उनको और औलाद दे दी। और मुफस्सरीन कहते हैं कि असल में तो अल्लाह ताला ने उस बच्चे के ऊपर भी रहमत की कि जो उसके बचपन में मौत आ गई इस तरह से। आप सोचिए बच्चा मासूम था ना, तो जब आपकी बलूगत से पहले मौत आ जाती है, अगर प्यूबर्टी हिट करने से पहले आपका इंतकाल हो जाता है तो दिस इज योर इनोसेंस एज, इसमें आपसे पूछताछ नहीं होती है। जितने बच्चे भी प्यूबर्टी से पहले इंतकाल कर जाते हैं दे आर ऑल पार्ट ऑफ जन्ना, अहलुल जन्ना, तो अल्लाह ने उस बच्चे पर क्या रहमत की कि वो बच्चा जो कि बड़ा होता तो नाफरमान बनता, माँ बाप का नाफरमान होता तो ऑब्वियसली उसका ठिकाना जन्नत तो नहीं हो सकती थी, तो वो माँ बाप को तो नुकसान करता ही करता, वो खुद भी जहन्नुम में जाता। लेकिन उस वक्त अल्लाह ताला ने जो उसको मौत दी हजरत खिजर के जरिए, अल्लाह ताला ने उस बच्चे को भी उसका अंजाम भी एक बुरे अंजाम से बचा लिया। तो अगर हालात ऐसे हो जाए कभी किसी के ऊपर, किसी बच्चे के ऊपर ऐसी आजमाइश आ जाए, तो आपको जो चीज उस वक्त हिम्मत दे सकती है वो सिर्फ ये चीज दे सकती है कि इसमें इस बच्चे की भी खैर थी और इसमें हमारी भी खैर थी। आजमाइश बहुत बड़ी है, अल्लाह ताला हम सबको ऐसी आजमाइशों से महफूज रखे, इसलिए हमारे ईमान बहुत कमजोर है। अल्लाह किसी पर ऐसी, किसी माँ पर ऐसी आजमाइश ना डाले कि उसको अपनी औलाद का गम देखना पड़े, लेकिन अगर किसी पर आ जाती है तो सब्र का एक ही तरीका है कि ये सोच रखी जाए कि इस बच्चे के लिए भी बेहतर यही था और हमारे हक में भी बेहतर यही था। फिर जो तीसरा वाकया हजरत खिजर के साथ हुआ था दीवार बनाने का, उस पर हजरत खिजर ने एक्सप्लेनेशन ऐसे दी कि देखें आप जिस इलाके में मेरे साथ गए थे वहां के लोगों में बिल्कुल भी हॉस्पिटैलिटी नहीं थी, मेहमान नवाजी नहीं थी और उनको जरा भी एहसास और ख्याल नहीं था। तो वो दो छोटे यंग लड़कों की दीवार थी जिनका बाप नेक आदमी था और उसने वहां कुछ अपना माल इन बच्चों के लिए छुपा कर रखा हुआ। दीवार ऑलमोस्ट गिर गई थी, अगर और थोड़ा वक्त गुजरता तो दीवार पूरी गिर जाती और वो माल एक्सपोज हो जाता, और ये जो इतने क्रूड माशरे वाले हैं ये कैसे हो सकता था कि उस माल पर कब्जा ना कर लेते। तो अल्लाह के हुक्म से मुझे ये कहा गया कि मैं इस दीवार को दोबारा बिल्ड कर दूं ताकि बच्चे जब जवान हो तो वो इस माल को दोबारा ले। तो ये तीसरी कहानी आपको सूरह कहफ में मिलती है। चौथी कहानी कौन सी है? ज़ुल्कर्नैन की। ज़ुल्कर्नैन के पास, ज़ुल्कर्नैन बादशाह था और ज़ुल्कर्नैन के पास दो चीजें ऐसी थी जो कि बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है, एक उसके पास हिदायत थी और दूसरी उसके पास पावर थी, और ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है। आप जिनके पास पावर है उनके पास हिदायत नहीं है, और जिनके पास हिदायत है उनके पास पावर नहीं है। सो इट्स अ वेरी रेयर कॉम्बिनेशन जो अल्लाह ताला ने ज़ुल्कर्नैन को दिया था। और ज़ुल्कर्नैन की जो खूबी आती है वो ये आती है कि अल्लाह ताला ने उनको हर तरह के रिसोर्सेज दिए हुए थे, इसलिए उनके लिए आता है तो सबबा, उन्होंने अपने हर रिसोर्स को टू परफेक्ट एक्सटेंट 100% इस्तेमाल किया। अल्लाह ने उनको जितने रिसोर्सेज दिए थे उससे उन्होंने सिर्फ अपने अकाउंट्स को बिल्ड नहीं किया, सिर्फ अपनी टेरिटरी एक्सपेंड नहीं की, बल्कि उन्होंने उसको उम्मत के लिए, लोगों के लिए, दुनिया को बेहतर जगह बनाने के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने ईस्ट पर सफर किया, वेस्ट पर सफर किया और दो तीन तरह की नेशंस की तरफ हो गए जो आपको सूरह कहफ में मिलता है। एक वो ऐसे लोगों की तरफ गए जहां पर उनको लगा कि यहाँ क्राइम्स बहुत ज्यादा हो गए, और ज़ुल्कर्नैन की बेसिक चीज आपको प्रोमिनेंट चीज नजर आती है कि उन्होंने अपनी हिदायत और अपनी पावर से लोगों के अंदर इंसाफ डिस्ट्रीब्यूट किया। एक जिस कौम की तरफ हो गए वहां क्राइम्स बहुत ज्यादा थे, तो उन्होंने वहां जाकर अपनी पावर से लोगों के अंदर ये बात इनग्रेंड कर दी कि जो यहाँ पर नेक होंगे उनको हम, उनकी हम हिफाजत करेंगे और उनको हम नवाजेंगे, और जो यहाँ पर जुल्म करने वाले होंगे उनसे हम खुद डील कर लेंगे। यानी आपको ज़ुल्कर्नैन के अंदर ये चीज मिलेगी, बेहतरीन पॉलिटिक्स। उन्होंने सिर्फ ये नहीं किया कि जो मेरी एथनिसिटी का होगा उसको मैं पोजीशंस और उसको मैं मिनिस्ट्रीज दूंगा, जो मेरी पार्टी का होगा उसको मिनिस्ट्रीज मिलेंगी, बल्कि इन्होंने कहा कि जो अच्छा होगा उसकी, उसका हम ख्याल रखेंगे और जो गलत काम करने वाला होगा वी विल डील विद देम। और फिर साथ साथ ये भी कहते थे कि हम दुनिया में भी उसको सजा देंगे और आखिरत में अल्लाह तो उनकी नाइंसाफी की उनको सजा देने वाला है ही। दूसरी तरफ जो ये नेशन की तरफ गए वो नेशन वो थी जिनके लिए आता है बहुत सिविलाइज्ड नहीं थे, बस एक आइसोलेशन में रहने वाले थोड़े से लोग थे। हजरत ये जो ज़ुल्कर्नैन इनकी तरफ गए, उन्होंने यहाँ पर जाकर इनके अंदर बस इंसाफ का सिस्टम स्टेब्लिश किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम यहाँ आपका रेलवे स्टेशन बना देंगे, हम यहाँ पर आपकी जो है वो मेट्रो बस बना देंगे, हम यहाँ पर बहुत बड़ा सा एयरपोर्ट बना देंगे। इसमें भी हिकमत है, असल में जो चारों कहानियां हैं सूरह कहफ की, इन चारों कहानियों के अंदर इतनी हिकमतें मौजूद हैं कि आप एक घंटे में इसको बयान नहीं कर सकते हैं। ज़ुल्कर्नैन का वाकया बेहतरीन है दुनिया की इंजीनियरिंग, दुनिया की पॉलिटिक्स, दुनिया का इकोनॉमिक सिस्टम समझने के लिए बेहतरीन एग्जांपल है। ये जिस नेशन में गए, जो दरमियान की नेशन मैंने आपको बताई है, ये एक समझने की बहुत ही, जिसको आप कहते हैं ना थर्ड वर्ल्ड टाइप नेशन थी। ज़ुल्कर्नैन एक बहुत इलीट क्लास से सुपर पावर थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि अच्छा हम यहाँ पर आपको ये बना कर देंगे एंड देन यू विल बी आवर स्लेव, ये काम नहीं किया। इन्होंने इस नेशन को एज इट इज छोड़ दिया, सिर्फ इनमें इंसाफ डेवलप कर दिया। तीसरी जिस कौम की तरफ दुलकर नैन गए वो एक वैली में रहती थी, चारों तरफ पहाड़ थे उसके, और उनको एक मसला ये था कि वहां से रेडर्स आते थे जिनको आप याजूज और माजूज के नाम से जानती हैं, वो रेडर्स आते थे और इनको इनके ऊपर लूट मार करके और इनका मैसेकर करके चले जाया करते थे। तो जब दुलकर नैन यहाँ पर पहुंचे तो इस कौम ने कहा कि देखें आप इनके खिलाफ हमारे लिए कोई सपोर्ट सिस्टम बना दें। दुलकर नैन ने ये नहीं कहा कि अच्छा ठीक है लेट मी कॉल माय आर्मी फ्रॉम माय प्लेस, मैं आर्मी को बुलाऊंगा वो आपके रिसोर्सेज पर रहेगी, वो आपसे खाना लेगी, वो आपसे पे लेगी, सैलरी लेगी और फिर हम कुछ करेंगे। दुलकर नैन ने उन्हीं लोगों को इस्तेमाल किया और फिर क्या बनाया, दीवार बनाई उस चारों तरफ एक दीवार। और जिस तरह से दीवार बनाने को सूरह कहफ के अंदर, जिस इंजीनियरिंग को सूरह कहफ के अंदर दीवार बनाने की बयान किया गया है, वो इंजीनियरिंग आपको ये अल्लाह ताला चाहते तो अल्लाह ताला सिंपली कह देते कि उन्होंने दीवार बना दी, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि लोहा मेटल पिघलाया गया फिर वो डाला गया फिर उसको रेस किया गया फिर पिघलाया गया फिर डाला गया, इट्स अ होल मैकेनिकल प्रोसेस जिसको डिस्क्राइब किया गया। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला दुनिया की जो साइंस है उसको खुद यहाँ पर लेकर आ रहा है। अल्लाह कभी नहीं ये कहता कि सिर्फ सीक्रेट नॉलेज हासिल करो और रिक्वायर्ड नॉलेज को एक तरफ कर दो, इस्लाम का ये मिजाज नहीं है। इस्लाम कभी नहीं कहता कि बस आखिरत मिल जाए दुनिया में फकीरों की तरह गुजर जाए, नहीं, दुनिया मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह, आखिरत मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। दुलकर नैन ने ये दीवार बनाने के बाद भी ये भी मैं एटीट्यूड नहीं था कि जिसके लिए आता है कि उन्हीं लोगों को इस्तेमाल किया और वो कई महीनों में दीवार खड़ी हुई और वो दीवार ऐसी खड़ी हुई इतनी मजबूत दीवार बनाई कि याजूज व माजूज दोबारा उस दीवार को क्रॉस करके नहीं आ सके। और उसके ऊपर उन्होंने ये नहीं कहा कि देखें दिस इज आवर मास्टरपीस एक्चुअली जो हमने बनाया है, नेक्स्ट टाइम आप हमें इलेक्ट करेंगे, इस काम के लिए नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा, पाला हाँ तो रहमत तुम में रख भी, कोई कहते हैं पॉलिटिशियन आज की बात, हाँ तो रहमत तुम में रख भी, ये तो अल्लाह की रहमत है, मेरा क्या कमाल है, मैंने तो कुछ नहीं किया। आप देखें और कमाल देखें हमारे यहाँ स्पीचेस कैसी होती हैं, हमने ये किया, हमने ये किया और हमने ये किया, और हम जब आगे आएंगे तो हम ये करेंगे, और इसको तो ऐसी तो कोई चीज बना ही नहीं सकता। दुलकर नैन ने वो दीवार बनाई जिसके बाद याजूज माजूज उसको क्रॉस करके आ नहीं सके, और उसके बाद क्या कह रहे हैं, इतने महीनों की मेहनत के बाद, इतनी मजबूत दीवार बनाने के बाद, फइज़ा जाअ वअदु रब्बी जअलहु दक्का, जब मेरे रब का हुक्म आएगा, ये कितनी भी मजबूत दीवार है, इट विल क्रैश, ये गिर जाएगी, जब मेरे रब का हुक्म होगा ये गिर जाएगी, स्मैश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, रिसोर्सेज का इस्तेमाल तो है लेकिन उन रिसोर्सेज पर तवक्कुल नहीं है। रिसोर्सेज तो उस बाग वाले के पास भी थे। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दैट बाग वाला एंड दुलकर नैन, द डिफरेंस ऑफ एटीट्यूड। दुनिया होना बुरा नहीं है, दुनिया हो के मेरा एटीट्यूड कैसा है ये बुरा है। अगर मैं दुनिया पर ही सिर्फ अपने जो है तवक्कुल कर, ये बुरा, ये चारों कहानियां, ये चारों कहानियां बज़ाहिर हिस्ट्री में बुरी तरह से यूं फैली हुई है, लेकिन ये चारों कहानियां कुरान में, मुसहफ में, एक सूरत में इकट्ठी कर दी गई हैं। बज़ाहिर चारों बिल्कुल अलग अलग लगती हैं लेकिन चारों में एक कनेक्शन। अब देखिए हमारे लिए अल्लाह ताला ने दो दुनियाएं बनाई हैं, एक वो है जो इस वक्त इस दुनिया में हम मौजूद हैं, जिसको कहते हैं आलम शहादत, जो मुझे और आपको नजर आता है, आप और मैं एक दूसरे को देख सकते हैं, ये आलम शहादत है। एक और दुनिया है जिसको आलमुल गैब कहा जाता है, अल्लाह, फरिश्ते, जन्नत, दोज़ख, कयामत, सही, कब्र के बाद के हालात, ये क्या है, ये आलमुल गैब है, दिस इज अनसीन, ये मुझे और आपको नजर नहीं आते। इन चार वाकयात में दो वाकयात जो है उनमें यूं समझ लें कि अल्लाह ताला, अच्छा इतना अल्लाह हमारे आलम शहादा में विजिबल है, अल्लाह इनविजिबल है, हम अल्लाह को नहीं देख सकते, सही। ये जो चार वाकयात हैं सूरह कहफ में, इनमें दो वाकयात ऐसे हैं जिनमें अल्लाह ताला ने आलम शहादा में इंटरवीन किया है, यानी वो अल्लाह के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता था। मिसाल के तौर पर जो पहला आपने इसमें वाकया सुना असाबे कहफ वाला, दुनिया की कोई पिल ऐसी नहीं है, कोई टैबलेट ऐसी नहीं है, कोई खाना या डिनर या लस्सी आप ऐसी नहीं पी सकते जिसको पी के आप सोए तो 300 साल के बाद उठें। कोई है ऐसा खाना, कोई है ऐसी टैबलेट, नहीं, हाँ बहुत सारे टैबलेट खा जाएं तो फिर आप ऐसे सोएंगे नहीं, उठेंगे रोजे महशर उठेंगे या कब्र में उठेंगे, अल्लाह ना करे ऐसे हालात है, یہ اصحاب کہف کا 300 سال کے لیے سو جانا اللہ تعالیٰ کا اس عالم الشہادہ کے اندر اپنی انٹرونشن شو کرنا ہے, اللہ کا ظاہر ہو جانا ہے, اللہ کے علاوہ یہ کوئی کام کر ہی نہیں سکتا, اللہ نے اپنی جھلک دکھائی ہے عالم الشہادہ میں. دوسرا واقعہ کون سا تھا؟ دو باغوں والا, اور دو باغوں میں سے جس کے باپ تھے اس کے باپ تباہ کیسے ہوئے تھے؟ آسمان سے آپ بتائی تھی نا, تائف مطلب فرشتوں کا کوئی گروہ آیا تھا, کوئی یقیناً کوئی زلزلہ ہوگا, کوئی ٹارنیڈو ہوگا, کوئی سائیکلون ہوگا, کوئی تھنڈر اسٹارم ہوگا, کچھ بھی ہوگا, تو یہ ساری کیا ہوتی ہیں؟ کیا کہتی ہیں؟ نیچرل کلیمٹیز. نیچرل کلیمٹیز کہاں سے آتی ہیں؟ اٹس دی انٹروینشن فرام اللہ. نیچرل کلیمٹی جب آئے گی اللہ عالم الشہادہ میں اپنا تھوڑا سا اظہار کرتا ہے. صحیح, دو واقعات میں آپ کو صرف اور صرف اللہ نظر آ رہا ہے, زلزلہ آئے اور اوور نائٹ پورا شہر تباہ ہو جائے, یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا, یہ اللہ ہی کر سکتا ہے, اٹس کمپلیٹلی اللہ, اٹس ان دی ہینڈز آف اللہ. ایک 6 انسان سوئے 7 انسان سوئے اور وہ 300 سال تک سوتے رہے, اور پھر وہ نارمل انسان کی طرح اٹھ بھی گئے ہیلدی, کسی کو بیڈ سور بھی نہیں ہوئے, یہ صرف اللہ کر سکتا, کوئی نہیں کر سکتا. تو ان دو واقعات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے عالم الشہادہ. جو باقی دو واقعات ہیں, موسیٰ اور خضر والا اور چوتھا کون سا ہے؟ ذوالقرنین والا. اللہ تو ان میں بھی, مثال کے طور پر یہ مصحف میں نے اٹھایا ہوا ہے, آپ کہیں میں کہوں یہ مصحف میں نے اٹھایا ہے, آپ کہیں نہیں اللہ نے اٹھایا ہوا ہے. سر سر اللہ نے اٹھایا ہوا ہے, اٹس ایکچولی ٹیکنیکلی ناٹ ا رائٹ سینٹینس, میں نے اپنے مسلس کو کیا میں تو میں نے اٹھایا ہوا, بٹ ہو گیو می دا پاور ٹو ریز مائی ہینڈ لائک دس. ہے تو ہر چیز اللہ کے حکم سے, لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اس دنیا میں بظاہر اللہ چھپ جاتا ہے, انسان سامنے آ جاتا ہے, میری ایفرٹ سامنے آ جائے گی اس کو اٹھانے کی. ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہت اچھے گریڈ کے ساتھ اے اسٹار لے کر آ گیا پورے ریزلٹ میں, اسٹریٹ ایز لایا تو ہمارا بچہ, ایفرٹ اس کی تھی, بٹ پیچھے ایزن کس کا تھا؟ اللہ کا تھا, اور اللہ کے ایجنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. لیکن ہم جس دنیا میں رہتے ہیں جب انسان کا ایفرٹ اس میں مل جاتا ہے تو دس از اے ہیومن ویکنس, اللہ کا ہی پیچھے ہو جاتا ہے, انسان سامنے آ جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ اور میں چل کر یہاں آئے ہیں, صحیح, ہم میں سے کتنوں کو چل کے آتے ہوئے گاڑی میں بیٹھے, گھر سے نکلنے سے لے کر آبدا کے گھر میں یہاں نیچے بیسمنٹ تک آتے ہوئے ہم میں سے کس کو ایک مرتبہ بھی یاد آیا اللہ مجھے چلا کر یہاں لے کر آیا ہے؟ ہم جلدی جلدی ٹائم جا رہا ہے, الحمدللہ اگر کسی کو خیال ہے اللہ کی رحمت, الحمدللہ. لیکن جنرلی مجھ سمیت, مجھے بھی یاد ہے میں گھڑی دیکھتے ہوئے بھاگتے ہوئے آ رہی تھی, اس لیے دوپہر میں میری ایک میٹنگ تھی, صبح میری کلاس تھی, اور اس کے بعد میں ہارڈلی جو ہے وہ اپنے بچوں کو شکل دکھاتے ہوئے آ رہی ہوں. تو کبھی کبھی ہوتا یہ کہ آپ اتنا زیادہ اوور آکوپائڈ ہوتے ہیں کہ آپ بھول ہی جاتے ہیں کہ اصل میں مجھے چلانے والا کون تھا؟ اللہ تھا. تو اس عالم الشہادہ میں بہت آسانی سے ہماری نظروں سے اللہ اوجھل ہو جاتا ہے, اور ہمیں لگتا ہے صرف ہماری ایفرٹ ہے. موسیٰ اور خضر کا معاملہ ہو, ذوالقرنین کا معاملہ, اصل میں موسیٰ اور خضر کے معاملے میں جو پلانکس نکالنے والے تھے وہ تو بظاہر کون تھے؟ حضرت خضر تھے, لیکن وہ کرا کون رہا تھا؟ اللہ کرا رہا تھا. اس بچے کو قتل کرنے والے ہاتھ تو خضر کے تھے, کس کے حکم سے ہو رہا تھا؟ اللہ کے حکم سے ہو رہا تھا. وہ دیوار کو دوبارہ کھڑے کرنے کا پلان بند تو موسیٰ اور خضر کے ہاتھوں سے رہی تھی, لیکن حکم کس کا تھا؟ اللہ کا تھا. جو ذوالقرنین کا واقعہ ہے, اس میں وہ جو دیوار انہوں نے بلڈ کی, بظاہر یہ تو نہیں ہم کہتے اللہ نے بلڈ کی, ہم کہتے ہیں ذوالقرنین نے بلڈ کی, اور قرآن کہتا ہے کہ ذوالقرنین نے اس کو بلڈ کیا, وہ سب اللہ کے حکم سے رہا تھا. لیکن ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہ دنیا ہمیں بہت تیزی سے اللہ کو بھلا دیتی ہے. یہ سورہ کہف ہمیں کیوں بار بار پڑھنی ہوتی ہے؟ یہ سورہ کہف کا ہمیں ہر جمعے کیوں جو ہے وہ اعادہ کرنے کا کہا گیا ہے؟ تاکہ ہم اس عالم شہادہ میں رہتے ہوئے یہ بات جان لیں کہ ہمیں ہر چیز اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہے. میں صرف اتنی سی بات آپ کو آج بتانا چاہ رہی ہوں. یہ سورہ کہف آپ کو اور مجھے یہی چیز بار بار ریمائنڈ کرانے کے لیے ہر جمعے کو پڑھنے کا کہا گیا ہے कि मैं वापस आकर जब इस कुरान में सूरह कहफ के सामने बैठूं तो मुझे याद आ जाए कि अच्छा मुझे ये सूरह कहफ पढ़ने का कहा क्यों गया। अल्लाह ये कभी नहीं कहता, हमारे यहाँ ये ट्रेंड बन गया है, बनता जा रहा है, इल्म की कमी की वजह से आ गया। हम कहते हैं जो इंसान दो, हम कहते हैं या तो इंसान दुनिया वाला हो सकता है या इंसान आखिरत वाला हो सकता है। ये जनरल कॉन्सेप्ट है, हो सकता है आप लोगों का ना हो बट इट्स जनरल कॉन्सेप्ट। हम कहते हैं कि लोग ये क्या बात है, तुम मिसाल के तौर पर मुफ्ती नहीं बन रहे, तुम इंजीनियर बन रहे हो। आप ये बताएं जो ज़ुल्कुरनैन ने किया है, जो इंजीनियरिंग यहाँ इस्तेमाल हुई है, वो इंजीनियरिंग आपको मेडल की स्टडी से ही पता चल सकती है। वो इंजीनियरिंग आपको सिर्फ दो रकात पढ़ने से नहीं पता चलेगी। आप क्या, मैं यहाँ बैठी हूँ, खुद ही आ जाएगा मेरा जो रिस्क है। ईमान आपका और मेरा है तकदीर पर, लेकिन ये बताइए इस्लाम असबाब इख्तियार करने की दावत देता है कि नहीं देता। असबाब इख्तियार करने हैं, ये दोनों चीजें साथ साथ लेकर चलनी है। और ज़ुल्कुरनैन का वाक्य आपको मुझे ये बता रहा है कि जो अल्लाह ताला ने इंसानी एफर्ट को प्रोमिनेंट रखा है आलम शहादा में, वो इसलिए रखा है कि इंसान अपनी कोशिश भी करे और साथ साथ अल्लाह को भी याद रखे। बास स्कॉलर्स ने बहुत प्यारी बात की, वो कहते हैं यूं समझने के एट ए टाइम आलम शहादा भी मौजूद है और आलम गैब भी मौजूद है। इसलिए क्या हमारा ईमान है कि इसलिए इस वक्त यहाँ पर बहुत से फरिश्ते हैं जिन्होंने इस घर को अपने इस जगह से लेकर आसमान, दुनिया के आसमान तक कवर किया हुआ। इसलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत बताती है कि जिस जगह अल्लाह का जिक्र किया जाता है उस जगह फरिश्ते जो हैं वो उसको उस घर से लेकर, उस मस्जिद से लेकर, उस जगह से लेकर पहले आसमान दुनिया तक कवर कर लेते हैं। ये हमारा ईमान है। सो एट ए टाइम इस वक्त आलम शहादा और आलम गैब दोनों मौजूद हैं, आपको और मुझे नजर नहीं आ रहे। उलमा कैसे बताते हैं, इट्स बीइंग लाइक आलम गैब इज बिहाइंड द कर्टन। और जो खिजर और मूसा का टिपिकल एक वाकया है इस पूरी सूरह कहफ में, उसमें सिर्फ ऐसा है जैसे एक पर्दा लिफ्ट करके उसकी हकीकत बता दी गई कि बच्चा कत्ल क्यों किया गया, दीवार क्यों बनाई गई, उस कश्ती को ऐबदार क्यों किया गया। आलम गैब तो मौजूद अभी भी है, लेकिन मूसा और खिजर के वाक्य में उस पर्दे को बस हल्का सा लिफ्ट कर दिया गया ताकि इंसानियत को हकीकत बता दी जाए कि अल्लाह हर फैसले के पीछे होता है, अल्लाह की कुदरत हर फैसले के पीछे होती है। इस चीज को अगर आप समझेंगे, इस फैसले को अगर आप समझेंगे तो आपको चीजों को बहुत आसानी से ट्रैक करना, समझना आ जाएगा। आज मैं और आप जिस दौर में रहते हैं, इस दौर में या तो हम और हमारे बच्चे या तो वो दुनियादार बनते हैं या वो दीनदार बनते हैं। जो जरा सा भी दीन की नॉलेज की तरफ आता है उसको लगता है कि अब स्कूल जाने की और यूनिवर्सिटी जाने की क्या जरूरत है, अम्मा मेरा दिल नहीं लगता पढ़ाई में, अम्मा मुझसे ये चैलेंजेस फेस नहीं। दे हैव टू चेंज द चैलेंजेस, दे हैव टू फेस द चैलेंजेस, उनको करने हैं। अगर वो इन चैलेंजेस को फेस नहीं करेंगे तो उनकी तरबियत कैसे होगी। और माँ को माँ का किरदार अदा करने की जरूरत है, अपने बच्चों के अंदर ये खूबी डाल देना कि वो दुनिया में जो काम भी करें उनको याद रहे कि अल्लाह मुझे देख रहा है। ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं है, लेकिन याद रखिए नामुमकिन भी नहीं है। बास काम मुश्किल होते हैं, नामुमकिन नहीं होते। आज के दौर में इस 2017 में रहते हुए औलाद को दीनदार बनाना नामुमकिन नहीं है, क्या है, मुश्किल। अगर आप कहेंगे ना बहुत मुश्किल, तो आप बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे, सॉरी मैं बाहर दूसरे बच्चों को जाके तो पढ़ा सकती हूँ, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकती। बिकॉज दिस इज अ रियलिटी कि दुनिया के बच्चे आपकी बात सुनेंगे, नहीं सुनेंगे तो आपके अपने बच्चे आपकी बात नहीं सुनेंगे, जिस अ फैक्ट ऑफ लाइफ। लेकिन इसका मतलब क्या है कि माँ बताना छोड़ दे, माँ का काम क्या है, माँ उस टेप की तरह चलती रहे चलती रहे चलती रहे, जो चलती रहती है और एक ही जुमला एक ही टोन में बोलती जाती है और बोलती जाती है और नहीं रुकती है। हाँ, एक चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है, जितनी भी यहाँ माए बैठे हैं, आपको दुनिया के हालात, दुनिया किस तरफ जा रही है, आपके स्कूल में आपके बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है, आपके स्कूल में आपके बच्चों के क्या डिस्कशंस होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। आपके बच्चों को स्कूल्स के अंदर, बाहर के मुल्कों में तो बहुत खुले नाम, और फिर आप पाकिस्तान में कराची में भी बहुत से स्कूल्स के अंदर खुलेआम एग्नोस्टिक्स बनाया जा रहा है। खुलेआम इसलिए कि डिस्कशंस होते हैं, और डिस्कशंस के अंदर ऐसे सवाल थ्रो किए जाते हैं जिससे बच्चा कम से कम कंफ्यूज जरूर हो जाएगा। आज अगर आप और मैं दीन के बारे में कंफ्यूज होंगे तो जरा अंदाजा कर लें कि आपकी और मेरी औलादें दीन के बारे में कितना कंफ्यूज होंगी। आपकी और मेरे मसलों का हल इस किताब में मौजूद है। ईमान है आपका? अगर ईमान है तो आप जरूर इस किताब के सामने जाकर बैठेंगे, आप जरूर इस किताब को खोलेंगे, आप जरूर अपने दिल की सही ग्रोथ के लिए, अपने दिल की सही ग्रूमिंग के लिए, अपने दिल की सही क्लेंजिंग के लिए आप सही जगह का इंतखाब करेंगे। साथ ही मैं बहुत आम सी मिसाल बता रही हूँ, आपको अपने बाल डाई करवाने होते हैं, सही? पार्लर तो जाते पार्लर में जाते हैं। अल्लाह आपको इतनी वलीउल्लाह खवातीन बैठी हो तो शर्मिंदा ही होगा आपके सामने। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपके जैसा तकवा हम सबको दे। देखें, चले आप किसी भी काम के लिए चले डॉक्टर हॉस्पिटल का या क्लिनिक का मामला ले लो, पार्लर छोड़ देते हैं। आप जब हॉस्पिटल जाते, खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला सबको सेहत और ईमान के साथ जिंदगी दे, मगर बीमारी इंसान के साथ लगी हुई है। जब इंसान है, आपकी और मेरी फिजिकल बॉडी है, तो जाहिर बीमारियां भी होंगी, इसलिए कि बैक्टीरिया और वायरसेस हमला करते हैं। जब आपके ऊपर बीमारी आती है तो आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके बेहतरीन जगह का इंतखाब करते हैं। जब आपके बच्चे को किसी अच्छे करियर को अडॉप्ट करना होता है, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके उसको दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी और स्कूल में भेजते हैं। जब दीन का मामला आता है तब हमें क्या हो जाता है, जितनी एफर्ट हम अपने बच्चों के दुनिया के इल्म के ऊपर लगाते हैं, अगर उसका 5% 100% में से 5% कुछ भी नहीं है, अगर उसका 5% हम अपने बच्चों के दीन बनाने में भी फिक्रमंद हो, तो ये नस्ल ऐसे नहीं बिगड़ेगी जैसे बिगड़ रही है। अगर माँ कंफ्यूज है, अगर माँ के हाथ में कुरान जो है वो सिर्फ बीमारी में आता है, अगर माँ जो है वो समझती है कि कुरान सिर्फ और सिर्फ बस जो है वो सुबह शाम पढ़ने की किताब है पढ़ने की किताब, बट दिस इज अ बुक ऑफ गाइडेंस, मैं शौहर कैसे अपना जो है उसको अपने साथ जो है मोहब्बत करने वाला बना सकती हूँ, मैं अपनी माँ का हक कैसे अदा कर सकती हूँ, मैं अपनी बेटी का हक कैसे अदा कर सकती हूँ, मैं अपने इन-लॉज और अपने मैके को किस तरह से बेहतरीन तरीके से ले कर चल सकती हूँ, कहाँ में ये सब चीजें इसी किताब में है, कहीं और नहीं है। हर तीसरी चौथी औरत जो है वो साइकाइट्रिस्ट के पास क्यों भाग रही है, सुकून क्यों नहीं है हमारी जिंदगियों में, परेशानियां क्यों, हम में से बहुत से लोग तो सूरह कहफ हर्जों में पढ़ते हैं फिर भी हमें अल्लाह याद नहीं रहता है। परेशानी आती है और परेशानी के बाद दूसरी परेशानी और तीसरी परेशानी और चौथी परेशानी, तो उसके बाद जो है 2 महीने के अंदर हमारे ईमान लरस जाते हैं। क्यों हमारे ईमान लरस जाते हैं, फिर हम कहते हैं कि अच्छा किसी से दम करवा लेते हैं। आप अपने अपने ऊपर जैसा अच्छा दम खुद कर सकती हैं, कौन आपके ऊपर ऐसा दम करेगा, दम कभी नहीं, आपका दम ही ना निकाल ले। और जो दम निकलते हैं दम कराते कराते जरा कहानियां तो सुने, हमारे ईमान कमजोर क्यों है, हमें आलिमुल गैब याद नहीं रहता है। हम कहें हम तो बहुत कुरान पढ़ते हैं, मैं तो महीने में 6 कुरान खत्म करता हूं, मैं सुबह कहा 15 मिनट में पढ़ लेती हूँ। सॉरी, आप मुझसे कोई अगर ये कहेगा कि मैं सुबह कहा 15 मिनट में पढ़ लेती हूँ तो मेरी तरफ से उसको कोई बैच ऑफ ऑनर नहीं दिया जाएगा, इसलिए अगर आप प्रॉपर तजवीद के साथ पढ़ेंगी तो आप 15 मिनट में सूरह कहफ नहीं पढ़ सकते। मैं खुद एक सिटिंग में सूरह कहफ मुकम्मल नहीं पढ़ सकती, मैं थक जाती हूँ, मैं अपने स्लॉट्स रखती हूँ कि मैं इतना पढ़ूंगी फिर इतना पढ़ूंगी फिर इतना पढ़ूंगी, मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। बट मैं सूरह कहफ हर जुमे को पढ़ती हूँ, मैं कुरान महीने में 6 खत्म कर लेती हूँ, मैं तो अपनी जो है वो इसकी तस्बीह 100,000 दफा पढ़ती हूँ और इसकी तस्बीह 100,000 दफा पढ़ती हूँ। ये सब कुछ है, लेकिन फिर भी अगर तीन बेटियों के बाद चौथी प्रेगनेंसी होती है तो आपके दिल में ये खौफ क्यों बैठ जाता है कि अगर फिर बेटी हो गई तो? तो सूरह कहा आपको क्या सिखा रही है? ईमान बिल्लाह कमजोर है, ईमान बिल्लाह मजबूत नहीं है, ईमान बिल आखिरा कमजोर है। हर प्रेग्नेंट औरत जो पहली दफा प्रेग्नेंट होती है उसको हमेशा दिल के अंदर एक ख्याल और दुआ क्यों रहती है, या अल्लाह पहला बेटा दे दे, या अल्लाह पहला बेटा दे दे। क्यों क्यों होता है? इसलिए हम अपने इर्द गिर्द जो देख रहे हैं उन सारे एक्सपीरियंसेस का हमारे ऊपर जो है यलगार है। हमें लगता है कि बेटा होगा तो शायद हमारी शादी सेफ रहेगी, रिश्ता सेफ रहेगा, ससुराल की पोजिशन आ जाएगी, और फिर वो डे वन से माँ और बेटे की अनहेल्दी डायनेमिक होती है। एक माँ बेटे की माँ सारी जिंदगी अपने बेटे के गिरतवाफ करती रहती, 20 साल तक उसके गिरतवाफ करे, 22 साल की उसकी शादी कर देती है, और फिर जो बहू आती है बहू की अलग कहानी और सास की अलग कहानी शुरू हो जाती है। फिर जो बहू आती है तो उसके बाद फिर वो बेटा बेचारा वो क्या बन जाता है, वो तो वो जो स्पिन वो जो पीक करने वाले की उसके ऊपर मशीन के ऊपर वो उसकी जो वो चल रही होती है ना स्पिन करती, मुझे लगता है कभी आप बेचारे पर्दों का हाल होता है क्या मान लीजिए सीधे सिखाई। तो अक्सर बहुत सी खातन से शादी ब्याह के टॉपिक पर बात करने का मौका मिलता रहता है, और अगर मैं इन्हीं बातों को सोचती ना मैं किसी ऐसे पीको वाले के पास जाकर खड़ी हो जाऊं तो वो जो उसके ऊपर नलकी लगी हुई होती है जिस तरह घूम रही होती है बेचारा वो मर्द नजर आ रहा होता है। ये सास बहू का झगड़ा कोई झगड़ा है ही नहीं, दिस इज अ रिडिक्यूलस थिंग। क्या एक बेटे की माँ उसकी बीवी की जगह ले सकती है? क्या बीवी माँ की जगह ले सकती है? पॉसिबल। जैसा माँ से मोहब्बत की जाती है वैसी बीवी से मोहब्बत नहीं की जाती, और जैसी बीवी से मोहब्बत की जाती है वैसी माँ से मोहब्बत नहीं हो सकती। दिस इज रिडिक्यूलस। और बेवकूफ होती है वो माए और वो बीवियां जो बीच में शौहर को बैठाकर पूछती है बताएं इससे मोहब्बत ज्यादा है कि मुझसे मोहब्बत ज्यादा। फिर हम कहते हैं कि शौहर बदमिजाज पड़े हैं आजकल, लगता है किसी ने जादू कर दिया, आपकी हिमाकत और आपके वजन के पढ़ने ने शायद उनके ऊपर जादू कर दिया हो तो कर दिया हो, और वो जादू नहीं कर पा। ये कुरान समझकर पढ़ें, ये कुरान ईमान बढ़ाने के लिए पढ़ा जाता है। हम इतना कुरान पढ़ते हैं, हम इतना कुरान सुनते हैं, कितनी मरतबा आंखों से आंसू निकले, आखिरी मरतबा कौन सी नमाज थी जिसमें तिलावत करते हुए कयाम में सूरह फातिहा के बाद जो आपने आयात पढ़ी उसमें आपको रोना आया? शायद वो पिछला रमजान था, शायद कोई अगर ऐसा कुछ नसीब हो तो अल्हम्दुलिल्लाह, वरना ये पिछला रमजान था। हम हर जुमे को सूरह काफ पढ़े और हमारा आखिरत पर और अल्लाह पर और तकदीर पर ईमान मजबूत नहीं हो, इसका मतलब है कि कहीं बहुत बड़ा गैप है। ये सूरह काफ आपको और मुझे दुनिया की रंगीनियों से बचने का बेहतरीन तरीका बताती है कि इस दुनिया में रहें। इस्लाम रहबानियत इख्तियार करने की बात नहीं करता, इस्लाम नहीं कहता छोड़ दो यूनिवर्सिटीज को, छोड़ दो स्कूल्स को, छोड़ दो इंडस्ट्रीज को, छोड़ दो अपने सोशल सिस्टम्स को, चले जाओ जंगलों में और मोनास्ट्रीज में जाकर बैठ जाओ। इस्लाम ये नहीं कहता है। इस्लाम कहता है दुनिया में इंटरेक्शन करो बट विदाउट अटैचमेंट। दुनिया शुड बी इन योर हैंड बट नॉट इन योर हार्ट। गुलकुरनैन का मामला यही था, दुनिया के बेहतरीन रिसोर्सेज थे उनके पास लेकिन वो रिसोर्सेज उनके हाथ में थे, उनके दिल में नहीं थे। दिल में कौन था? कहना आसान है, दिल में अल्लाह था। अपने अपने दिलों में छान के देखें हमारे दिलों में कितना अल्लाह मौजूद है, कितना हमने अपने दिल के अंदर अल्लाह को रखा हुआ, कितना मुझे दिन भर अल्लाह याद ना आए तो मैं परेशान हो जाती हूँ। उन माओं का सोचें जिनके बेटे बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए, अगर बेटे का 3 हफ्ते तक फोन नहीं आया तो माँ की जरा परेशानी का आलम तो देखिए, 3 हफ्ते में बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, जबकि आजकल जो है वो सोशल मीडिया ने इतना करीब कर दिया है। अगर किसी बच्चे का 3 दिन तक फोन नहीं आता तो माँ की हालत तो देखें, और एक औरत को 3 दिन तक कुरान पढ़ना याद नहीं आता तो हम कितना परेशान होते हैं। हम कहते हैं हाँ जुमे को पढ़ लेंगे, सूरह काफ पढ़ लेंगे, और सूरह काफ पढ़ते हैं और उसके बाद भी दिल से दुनिया की मोहब्बत नहीं निकलती इसका मतलब है कि इतने बल्क में से मैंने अपने लिए अमल के लिए कुछ भी नहीं उठाया। इस चीज को समझो, इस चीज की गहराई को समझो। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक दे कि हम इस कुरान का हक अदा करने वालों में शामिल हो जाए। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम जितना कुरान पढ़ें उसको समझ के पढ़ें और जो समझ आए उस पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला मेरे और आपके लिए इसी आलम शहादा में रहते हुए आलम गैब पर यकीन और ईमान को मजबूत बना दे। अल्लाह ताला हम माओं को और हमारी बच्चियों को हमारे बच्चों को तौफीक दे कि हम बेहतरीन तरीके से इसी दुनिया में रहते हुए इस दुनिया के रिसोर्सेज को हार्नेस भी करें और इनसे अपनी आखिरत भी कमा सकें। इसलिए आपको और मुझे यही सिखाया गया है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह हमें दुनिया का खैर भी दे और अल्लाह हमें आखिरत का खैर भी दे। और याद रखे, मोमिन के पास माल पसंदीदा है, रिस्क हलाल से हो तो मोमिन के पास माल पसंदीदा है, इसलिए कि वो खुद किसी का मोहताज नहीं होता। दीन को जहाँ जरूरत होती है वहां खर्च करता है और अपने मोहताज भाई की मदद करता है। तो मुसलमान के पास रिस्क हलाल से माल होना पसंदीदा है। अल्लाह हमें और हमारी औलादों को रिस्क हलाल का निवाला खिलाए। अल्लाह हमें हमारे वालिदैन के लिए और हमारी औलादों को हमारे लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाए। जिनके वालिदैन का इंतकाल हो चुका है और जिन लोगों का इंतकाल हो चुका है, अल्लाह उनकी बेहतरीन मगफिरत फरमाए। अल्लाह ताला इस घर के ऊपर अपनी रहमत के दरवाजे खोले कि जिन्होंने अपने कलाम के लिए अपने घर के दरवाजे खोले हुए हैं। अल्लाह ताला हम सब की जो भी जायज दुआएं हैं उनको कबूल फरमाए। अल्लाह हमें इस दीन को दोबारा जिंदा करने वालों में शामिल फरमा दे। अल्लाह ताला हमारे लिए दीन पर स्टैंड लेना आसान बना दे। अल्लाह हमारे लिए इन चैलेंजेस में स्टेडफास्टनेस इस्तेकामत इख्तियार करने को आसान बना दे। अल्लाह हमारा ईमान बिल्लाह और ईमान बिल आखिरा मजबूत करे। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरान अल हकीम व नफअनी व इयाकुम बि आयाति व ज़िक्रिल हकीम। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।